दोबारा देखिए कारून की तरफ, क्योंकि ये सूरत का तीसरा सतून है जिसमें हम बात कर रहे हैं। शुरू में हम बात कर चुके कि इस सूरत के मेन थीम के अंदर ये चीज़ मौजूद थी जिसको अल्लाह ताला ने इधर इतना खोल के बयान कर दिया। फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही, बस निकला ठाट बाट के साथ अपनी कौम के सामने ज़ेबो ज़ीनत करते हुए, बड़ी शान से हुआ। हम भी ज़रा देखें कि हम किस तरह ठाट बाट दिखाते हैं। घर बनाने पे ज़्यादा पैसा उठता है या घर को सजाने में ज़्यादा पैसा लगता है? पत्थर ज़्यादा महंगा आता है जो माथे पे लगता है, या ईंटें महंगी आती हैं जो बुनियादों में पड़ती हैं? गाड़ी महंगी है या गाड़ी का ब्रांड महंगा है? सोचें हम, कपड़ा आम पहनना, जिस्म ढांपना ज़्यादा महंगा है या कपड़े के ऊपर जो चीज़ें हैं लगी हुई हैं वो महंगी हैं? मैंने तो देखा है कि जितने का कपड़ा होता है उससे महंगे की लैसे डोरियाँ लोग ले रहे हैं आज के दौर में। ये क्या है? ठीक है, ले सकते हैं, लेते हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे। ये बड़ी बड़ी बरातें क्या हैं? क्या ये फिरौन के अमल से मुशाबहत नहीं है? ठाट दिखाता हुआ निकला। ये सारी खराबियां कहाँ जाती हैं? यहाँ जो मैं वो बात कर रही थी उस वक्त जहन से निकल गई थी, अब दोबारा जहन में आई कि एक चीज़ जिससे आप वाकई अपने अंदर से बतर को खुरच के रख देंगे, वो क्या है? कि लोगों की अहमियत को दिल से कम कर दें। हैं क्या, मैं तो इनके आगे पैर ओढ़ के इतनी एड़ी चोटी का जोर करूँ, इनको क्या, छोड़ो इनको क्या पता चले। यानी जब हम लोगों के सहर में मुब्तला होते हैं ना, तो हम उनकी नज़रों में बड़ा बनते हैं। अल्लाह के सामने हम गंदे मंदे हाल में भी चले जाते हैं नमाज पढ़ने, और लोगों के सामने हम निकल ही नहीं सकते जब तक कि हम अपने आप को सजा संवार ना ले। साफ करना और बात होती है, लेकिन सजाना और बात होती है। तो दुनिया की मोहब्बत सारे गमों की इब्तदा है। कारून का शो ऑफ देख कर कुछ लोगों की राल टपकी। क़ालल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैतलना मिस्लमा उतिया कारून, कहने के हाय अफसोस, ए काश हमें भी वही मिले जो कारून को मिला। क्या आज भी इस कारून लफ्ज़ के नीचे आप चंद नाम नहीं लिख सकते कि लोग उनको आइडियलाइज करते हैं? तो जाहिर बीनी नहीं, गौर करें, अंदर देखें। मैं तो कहती हूँ बंदा सारे मामले अल्लाह पर डाल दे। अल्लाह तू मुझे जिस काबिल समझता है ना, मुझे वो दे दे। हदीस में आता है कुछ लोगों को माल मिल जाए तो उनका दीन बिगड़ जाएगा, शो ऑफ पे चले जाएंगे, तकब्बुर में जाएंगे, और कुछ का माल छिन जाए तो वो मायूसी में चले जाएंगे। तो हमें नहीं पता कि हम कितने पानी में रह सकते हैं। अल्लाह बंदे की औकात देख कर उसको देता है। शुक्र करे कि अल्लाह मुझे वो दे जिससे मेरा दीन महफूज है, और मुझसे कोई चीज़ ना लेना ऐसी कि जिसके बाद मैं दीन से दूर हो जाऊँ और पीछे चली जाऊँ ऐसी चीज़ों पर। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने उसका अंजाम बता दिया कि ऐसे लोग जो बातें कर रहे थे, जो दुनियादार थे, वो तो उसकी ख्वाहिशात कर रहे थे, लेकिन उतुल इल्म, यहाँ आप गौर करें आयत 80 में, काल्लज़ीना उतुल इल्मा, क्या कहा, उतुल इल्म या उतुल इबादा? इबादत वाले बोले कि इल्म वाले बोले? क्योंकि इल्म दिल की दुनिया में तूफान बरपा कर देता है। इन्नमा यख्शुल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो डरते ही इल्म वाले बंदे हैं। इल्म वालों को दुनिया की बेसबाती का पता चल जाता है, आखरत उनके सामने खुली आंखों से दिखने लगती है उनको, लिहाजा कहेंगे वही लकुम, खराबी है तुम्हारी, आराम से बैठो, कैसी बातें करते हो। सवाबुल्लाह खैरुल्लिमन आमना वामिला सालेहन, अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाकर अमल सवाले करे। वो दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि हम वो नहीं कर रहे जो दूसरे कर रहे हैं, फिर बंदे को अपनी कोशिशें छोटी लगेंगी। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखते हैं कि अल्लाह मुझे तूने कितनों से अच्छा रखा है। हाँ ये बात, वमा युलक्का इल्ला साबिरून, ये बात सिखाई ही साबिरों को जाती है। या बताएं कौन से साबिर हैं, किस चीज़ से सब्र है? पीछे जो बार बार आप सब्र के मुख्तलिफ दर्जे पढ़ते हैं, यहाँ कौन सा सब्र है? दुनिया का सब्र है। ये दुनिया की नेमतों को पाने की झुन में ही ना लगा रहे, यानी यहाँ सब्र कनात के मानों में है कि थोड़े पे खुश है, या जो अल्लाह ने दिया है उसमें से अल्लाह का हिस्सा नहीं भूलते और आगे से आगे देते जाते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला उसका अंजाम बताते हैं। फ़खसफ नबीही व बिदारिहिल अर्दा, बस हमने उसको भी गर्क कर दिया और उसके घर को भी ज़मीन में। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि एक शख्स बड़े अच्छे कपड़े पहन ओढ़ कर अपनी सवारी पर निकला तकब्बुर के साथ, और अल्लाह ताला ने ज़मीन को खोल दिया और वो ज़मीन के अंदर धंसता ही गया, और हर दिन एक कद के बराबर ज़मीन में जा रहा है। यानी घोड़े पे सवार कोई शख्स जितना ऊंचा होता है, इतना हर दिन कारून जो है ये ज़मीन में धंसता ही जा रहा है। जो बड़ा बनेगा अल्लाह उसको छोटा बनाएगा ना। अब देखिए कि जो छोटा बनेगा ना, अल्लाह उसको बड़ा बनाएगा। इसीलिए अब इससे अगली आयतों में अल्लाह ताला ने बड़ा बनने के राज बताए हैं कि कैसे एक बंदा बड़ा बन सकता है और किस तरह होगा। पहले कारून की बात पूरी कर लेते हैं कि फ़मा कान लहु मिन फियति यंसुरू नहु मिन दूनिल्लाह। फिर तो कोई इसके हामियों की जमात ना थी जो इसके अल्लाह के मुकाबले में मदद करती। अल्लाह ज़मीन में घिसा रहा था तो ये ऊपर आ जाता, कोई इसको खींच लेता, कोई इसकी मदद ना कर सका। वो किधर के सारे तारीफें करने वाले, बड़ा बनने वाले, उसको बड़ा बनाने वाले। वमा कान मिन अल मुंतसिरीन, वो खुद भी अपना इंतकाम ना ले सका। किससे? अल्लाह ताला से। बस लोगों ने इसके ऊपर एक वाक्या भी लिखा है कि एक फाहिशा औरत के साथ मिलकर इसने साजिश की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वास कर रहे होंगे तो मजमा आम में आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। इस तरह वो मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को ख़त्म करके दीनी मनसब भी खुद संभालना चाहता था, यानी ब्लैकमेल करके या दीनदारों पर इल्ज़ाम लगाकर आगे आना चाहता था। इसने इस औरत को कई हज़ार दिरहम बतौर रिश्वत दिए। एक रोज़ आप वाज फरमा रहे थे, आपके वाज का मौजू भी यही था कि जो चोर होगा इसका हाथ काटा जाएगा, जो बदकारी का इर्तकाब करेगा इसे रजम कर दिया जाएगा। कारून ने इसे सुनहरा मौका समझा और उठकर कहने लगा, ये कानून सबके लिए है या बाज़ लोग इससे मुस्तस्ना है? आपने फरमाया सबके लिए। इसने पूछा कि आपके ऊपर भी ये लागू होगा? हज़रत मूसा ने कहा बेशक। इसने कहा फलां औरत तो आपके बारे में ऐसा और वैसा कहती है और उसे हमल भी करार पा चुका है, इसलिए इस कानून के मुताबिक आपको भी रजम की सज़ा मिलनी चाहिए। हज़रत मूसा ने कहा कैसी बातें करते हो, कहाँ है वो औरत, उसको बुलाओ। जब वो औरत आई तो आपने कहा कि तुझे खुदा की कसम, जिसने बनी इसराइल के लिए समंदर को शक किया, जिसने मुझे तौरात अता फरमाई, तू सच सच बता दे। अल्लाह ताला ने इसे झूठ बोलने की हिम्मत न दी और उसने सारी हकीकत खोल दी कि मुझे कारून ने ये इल्ज़ाम लगाने के लिए रिश्वत दी थी। तो आपको कारून के जब इस जुर्म का पता चला, दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, तो उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कारून को ज़मीन के अंदर धंसा दिया था। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वअसबहल्लज़ी नतमन्नौ मकानहु बिलअम्स, और सुबह की इन लोगों ने जो कल तक इसके मकान यानी मर्तबे की तमन्ना कर रहे थे, अम्स यस्टरडे को कहते हैं, गुजरा हुआ कल, कल तक जो लोग उसको खुशकिस्मत समझते थे आज वो अफसोस करने लगे। यकूलूना वही कान्नल्ला, हाय अफसोस, अब पता चला कि अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कुशादा करता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, मिन इबादी ही अपने बंदों के लिए, वह यकदिर और तंग करता है। लौला मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी ज़मीन में गाड़ देता। ये क्यों कहा भाई? ये तो तकबर नहीं कर रहे थे, ये तो फ़ख्र नहीं कर रहे थे। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक शख्स जिसने बुराई की, दूसरा एक शख्स जो कर नहीं सक रहा, उसके पास वो सोर्सेस नहीं है, लेकिन कहता है कि अगर मेरे पास भी वो सब होता तो मैं भी ऐसे ही करता, तो फरमाए ये दोनों बराबर हैं। अगर अल्लाह बुरा काम करने वाले को पकड़े तो ऐसी नियत रखने वाले को भी पकड़ सकता है, क्योंकि असबाब का ही फ़र्क है ना। बस एक शख्स है वो गलत काम करता है, गलत जगहों पर जाता है, उसके पास पैसा है, असबाब है, दूसरा बैठा कहता है हाय मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी आज ये गलत काम करने जाता। तो आप सोचे कि कमी बीच में पैसों की है ना, नियत इरादा तो मौजूद था, तो गोया कि वो उसी की तरह। तो यहाँ उनकी ख्वाहिश करने पे इनको डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह हमें भी उसके साथ ना कर देते। ये तो थी बड़े बनने की, बड़े बनाने की नियतें करने वालों की कहानी। अब पता चलता है कि असल में बड़े कौन है। इसी वाक्य को बेस बनाकर अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत कानून दिया। तिलकत दारुल आखिरतु नजअलुहा, ये आखिरत का घर हम मखसूस कर देंगे, यानी इसकी नेमतों को, किनके लिए? लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, उन लोगों के लिए जो ख्वाहिश नहीं रखते ज़मीन में बड़ा बनने की और न फसाद बर्पा करने की। वला अक़िबतु लिल मुत्तकीन, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों के लिए। अब ये जुमला अगर आप दुनियावी और दीनी दोनों मामलों में रख लें तो इंशाअल्लाह ताला पिछली सारी बातों का जवाब मिल गया। आखिरत की बड़ाई किसको मिलेगी, दारुल आखिरा किसको मिलेगा, जो दुनिया में बड़ा नहीं बनना चाहता। वो ये नहीं चाहता मुझे यहाँ टाइटल्स मिले, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मुझे ऑनर दी जाए, कुछ मुराआत मिले, कुछ मुझे दूसरों से ज़रा नुमायाँ कर दिया जाए, और इसी तरह अपने सारे माल असबाब को दुनिया के अंदर मज़ीद ऊंचा होने के लिए नहीं लगाता बल्कि छोटा बन के रहता है। इसीलिए आप देखिए कि हज़रत उमर चाहे एक लीडर थे, खलीफा थे, लेकिन कहाँ फर्श पे सोयात करते थे। आम इंसानों जैसे बन के रहते थे, कोई फाखिराना किस्म का लिबास, कोई कपड़े, कोई सवारियां इस्लामी मुमलिकतों के सरबराहों को जेब नहीं देती। बड़ाइयाँ, झूठा प्रोटोकॉल जो होता है, ये इंसानों को इज्जत नहीं देता। असल उसको मिलेगा जो दुनिया में बड़ा बनने की ख्वाहिश नहीं करेगा। इसीलिए इस्लाम में खुद लीडरशिप मांगना या हुकूमत मांगना पसंदीदा नहीं है। आज तो वोटिंग सिस्टम है ना, हर जगह वोट्स मांगते हैं और दिए लिए जाते हैं। इवन बाज दफ़ा आप देखिए कि दीनी ऑर्गेनाइजेशन में भी वोटिंग की बेस पे चुनाव होता है, ये भी इस्लामिक तरीक़ाकार नहीं है। जो मांगे उसको ना दो, हदीस में आता है कि जो तुमसे मांगे उसको ना दो। लेकिन आप कहेंगे कि सूरत यूसुफ में तो हमने पढ़ा कि हज़रत यूसुफ ने खुद ही कहा था कि मुझे दे दो वज़ीर ख़जाना का दर्जा, क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अलीम भी और अमीन भी हूँ। तो क्या फिर मुराद है? इस पर फिर बात आती है कि जब बंदा देखे कि इस काम को करने की सलाहियत मेरे में है, मैं इससे दूसरों को फ़ायदा दे सकता हूँ और कोई दूसरा इस तरह का नहीं कर सकता ये काम जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर अपनी खिदमात पेश करें, ना कि अपनी ज़ात को बड़ा बनाने के लिए कि मुझे बड़ा शौक है मुझे लीडर बना दें। ये अपना शौक ना हो बल्कि लेने की बजाय देने का इरादा हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें ना सिर्फ ये कि वो पसंदीदा जायज़ है बल्कि पसंदीदा भी है। यहाँ जो लफ्ज़ उलूवन आया ना, तो इसके कई मुख्तलिफ मानी हैं। एक क्या है? लोगों पर अपना गलबा और तसल्लुत जमाना, इनको हकीर और जलील समझना, नुमाया होना, टू बी प्रोमिनेंट का मानी रख लीजिए आप। और इसी के अंदर फिर लोगों के हकूक को जब गसब किया जाता है तो वो भी मानी आ जाता है कि लोगों को छोटा करके खुद बड़ा बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला अकीबतुल मुत्तकीन, आखिरी अंजाम तो मुत्तकियों का अच्छा है। कैसे? सूरत हुजरात में आता है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला मुत्तकी है, जो तकवा ज्यादा रखता है। मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिनहा, बढ़ाना चाहते हो तो नेकियों को बढ़ाओ, जो एक नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे भी बेहतर बदला है। व मन जा बिस्सैयति फला युज़ल्लज़ीना अमिलुस्सैयाति इल्ला मा कानू यअमलून, और जो इर्तकाब करता है बुराई का तो नहीं बदला दिया जाता मगर सिर्फ उतना ही जितनी उन्होंने बदकारियां की, जितना वो करते थे। यानी बढ़ाना है तो इसको बढ़ा लो, हसनात की दौड़ लगाओ, इसको सीखने के लिए मजीद स्किल्स ले लो। दुनिया को बढ़ाने के लिए मजीद सीखोगे भी तो फिर भी आखिर छोड़ के ही जाना है ना। तो यहाँ पे एक सोच को डाइवर्ट किया जा रहा है कि खूबसूरत तरीका ये है कि एक बंदा आखरत की करेंसी यानी नेकियों को बढ़ाए। इसके बाद अब वो आयत है कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ढारस दिलवाई थी जब आप मक्का को छोड़ रहे थे और मदीना के रास्ते में थे। इंट्रोडक्शन पे इस पे बात हो चुकी है। इन अल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरआना लरादूका इला माद, यकीनन वो कादरे मुतलिक जिसने आप पर कुरान की तबलीग फ़र्ज़ की है, आपको वापस ले जाएगा जहां आप चाहते थे। यानी जो आप चाहते थे वो अल्लाह ताला आपसे ज़रूर करवाएगा। इस आयत में नंबर एक है कि फ़रद अलैकल कुरान, तर्जमे में मैंने आपके सामने क्या रखा कि जिसने आप पर कुरान की तबलीग फ़र्ज़ की है, ये सच है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान ने पाक को अल्लाह के नबी सल्लम के लिए एक किस्म की चेकलिस्ट भी बना दिया था, आपका खुल्क कुरान था। होना तो चाहिए था कि नज़ल अलैका, तो फ़रदा कहकर बता दिया कि इस कुरान को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाने, इसकी तालीम देने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एजेंडा देकर अल्लाह के नबी को भेजा गया था। दूसरी बात है रादू का इलामात, इसका क्या मानी है? इसके एक से ज़्यादा मानी पेश किए गए। मात के लफ्ज़ को पहले समझ लीजिए, औद से, आइन व दाल, पीछे हम पढ़ चुके हैं, उदना नउद, अगर तुम जाओगे तो हम भी आएंगे। पलट कर आना, वो मुकाम जिसकी तरफ आखिरकार आदमी को पलटना होता है। और यहाँ ये नकीरा के लिए आया है, अलमाद नहीं बल्कि माद है, जिससे पता चलता है कि वो मुकाम बड़ी शान और अजमत का है। इसके क्या मानी है? नंबर एक, सिंपल लोगों ने इसको जन्नत लिया कि इस दुनिया में थोड़े दिन के सितम है, जुल्म है जो लोग कर रहे हैं, सह लीजिए, बिल आखिर बड़ी इज्जत और शान के साथ आपको जन्नत मिल जाएगी। और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है अगर इससे जन्नत मुराद लिया जाए। और अल्लाह ताला ने तो नबी को मकाम महमूद का वादा दिया, वसीला का वादा दिया जो वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। इसी तरह माद से दूसरा मानी जो टैक्स के नाते से लें जिसमें पीछे बात हुई थी, तो वो है मक्का। क्या जिस मक्का से आपको निकलना पड़ रहा है, कल आप इंशाल्लाह यहाँ फातह बनकर पलट कर आएंगे। अल्लाह ताला आपको चंद सालों के अंदर ही इस तरफ वापस ऐसे लेके आएगा कि ये लोग आपके हाल पर रश कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया और हम क्या सोचते थे। यानी दुश्मनों के सारे प्लान्स आपके हक में गलत हो जाएंगे। फिर इसी तरह जो बात है अगली के इसमें अल्लाह ताला आपको पलटा देगा। एक और माना जो इसके अंदर मिलता है वो क्या है कि अल्लाह ताला आपको असल पर लेकर आएगा। असल क्या चीज़ होती है? फितरत। यानी जो चीज़ें आज लोगों ने अपने अंदर अपने ऊपर ओढ़ ली हैं दीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए, मुखालफतें, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल अपनी असल पर आ जाएंगे। यानी लोग इस दीन को कबूल कर लेंगे, लोगों को ये दीन बुरा नहीं लगेगा और हकीकत में इसके बाद फिर वाकई लोग उस दीन को अपनी खुशी बना लेंगे जिसके ऊपर वो आपको तंग करें। इसी तरह बास ने क़यामत भी मुराद लिया है कि क़यामत की तरफ आपको लौटाएगा और आपसे रिसालत के मनसब के बारे में पूछेगा। लेकिन आप देखिए कि इस आयत को जब हम अल्लाह के नबी के साथ लेते हुए अपनी ज़िंदगियों के साथ थोड़ा सा रिलेट करने के लिए देखें, तो बास दफ़ा दीन सीखने या सिखाने के मौके पे भी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मुश्किल मरहले आ जाते हैं कि सांस घुटने लगता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। कुछ दिन की मुश्किल जो होती है वो बात की आसानियों का ज़रिया बनती है। कुल रब्बी आलमु मन जा बिल खुदा, आप फरमाइए कि मेरा रब खूब जानता है कि जो लेकर आया हिदायत को, वह मन हुआ फी दलालिम मुबीन, और उसको भी खूब जानता है जो खुली गुमराही में। यानी मैं किसी पे कोई फतवा नहीं देता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, लोगों की किस्मतों के फैसले नहीं करता। अल्लाह को पता है कि कौन किस तरह से है, कौन किस पे। मैं तो अपना पैगाम दे रहा हूँ। और आखिर में फिर अल्लाह ताला नबी सल्लम को कहते हैं, वो माँ कुन ततर जुआई युल्का इलई कल किताब, और आपको तो ये उम्मीद भी ना थी कि नाजिल की जाएगी आपकी तरफ किताब। हाँ मगर फिर ये कैसे मिल गई? इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, ये तो महज आपके रब की रहमत है जो उसने आपको साहिबे कुरान बना दिया। लिहाजा फला तकूनन ज़हीरन लिल काफिरीन, काफिरों के मददगार ना बने। क्या ये आयत सिर्फ अल्लाह के नबी को कही जा रही है? हमें नहीं कहा जा रहा? क्या हमने भी कभी सोचा था कि हमें अल्लाह किताब देगा? हमने तो कुछ और ही प्रोग्राम बनाए हुए थे, हमारे तो कुछ और ही ख्याल थे। हम में से तो किसी ने डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को कुछ बनना था। हमारी तो डिक्शनरियों में भी ये लफ्ज़ नहीं था कि हम कभी साहिबे कुरान बनेंगे। अल्लाह की ऐसी नेमतें अचानक मिलती हैं, बाज़ दफ़ा हालात के उतार चढ़ाव के ज़रिए मिलती हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला बंदे को अंदर से उसकी सच्चाई की बुनियाद पर ऐसी चीज़ें दे देता है। आप देखिए कैसे लगता है ना, जैसे किसी को अचानक कहीं एडमिशन मिल जाए, वो कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हो गया। बस अब रिश्ता अचानक हो जाता है, सोचा भी नहीं होता, एकदम अचानक ऐसा अच्छा रिश्ता आया, हो गया। बाद में इंसान सोचता है, हाय ये हो गए, चुटकियाँ काटेंगे, ये काम हो गए, सोचा भी नहीं था ये काम हो गया। इसी तरह ये कुरान एक तितली की तरह, एक प्यारी चीज़ की तरह अल्लाह ताला इंसान की झोली में आके डाल देते हैं और कहते हैं ये मेरी रहमत है, ये मैं करता हूँ। तुम कोशिशें करके भी वो चीज़ ले सकते जो वाकई हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन क्या अल्लाह के नबी सल्लम को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं नबी बनूंगा? इस पे भी लोगों ने बात की। बस तो कहते हैं कि आप तो माशाल्लाह पहले ही दिन से नबी बने हुए थे। तो बात यह है कि इशारे तो मिल जाते हैं, लेकिन नेमत जब मिलती है ना तो बंदा यकीन नहीं कर पाता कि क्या वाकई मुझे ये मिलना है। तड़प थी, आपको मालूम था, अगर आप सीरत का वो बाप पढ़ें जो नबूवत मिलने से कुछ साल पहले का, हज़रत खदीजा आपकी गवाहियाँ देती हैं कि आप तनख्वाही पसंद हो गए थे, आप गार खरा में चले जाते, वहाँ इबादत करते, कई कई दिन तक वहाँ रहते। आपको कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक इल्ज़ाम का भी इजाल है कि मक्का वालों ने नबी सल्लम पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि आप तो पहले से तैयारियाँ कर रहे थे कि मुझे अब बड़ा बनना है, और अब आपने ये बात घड़ ली है कि आपके पास फरिश्ता आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह ताला ने ये दिया। पूरी सूरत के अंदर आप देखें तो तीन औरतों का हमें किरदार बहुत नुमायां तौर पे दिखा है ना। सबसे पहले उम्मे मूसा, एक माँ की कुर्बानी, कैसे उसने अपने बच्चे को लहरों के हवाले कर दिया अल्लाह का हुक्म समझते हुए। फिर उख्ते मूसा, मूसा की बहन, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिफारिश करके उनको उस महल में जगह दिलवाई। फिर ज़ौजाए फिरौन, जिसने फरमाइश की कि इस बच्चे को ना मारें। और उसके बाद बिनते शुएब, सफूरा। आज सोचे कि क्या हम अगर किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आ जाए तो करेंगे उससे अपनी बेटी का, या कोई लड़की अपना निकाह वहाँ ऐसे नेक शख्स से करवाना चाहेगी? अलग बात है ना। तो क्या पता चला कि जब तक औरतें अपना किरदार अदा नहीं करती, तब तक अल्लाह ताला की ये रहमत घरों में नहीं जाती। इसलिए आज अगर इस आयत को हम अपने ऊपर लेते हुए कहें कि अल्लाह, तूने जो इतनी प्यारी नेमत हमें दी है कि इसके बाद हमें तन्हाई अच्छी लगने लग गई है, अब हम दुनिया के हंगामों से परेशान होने लगे, तो हमारे दिल के अंदर जो खुशी मिल रही है वो लोगों को बाहर भी नहीं मिलती, तो अल्लाह अब तू हमें भी तौफीक दे कि हम अपना किरदार अदा करें, हम वो काम करें कि जिससे वो नेमत दूसरों के साथ शेयर करें कि जिसको हमने चखा है। और फिर आखिरी आयात है, वला यसुद्दन्नक अन आयातिल्लाहि बादा इज़ उन्ज़िलत इलैक। अल्लाह के नबी को भी और हमें भी कहा जा रहा है कि और ख्याल रहे वो हरगिज ना रोकें आपको अल्लाह ताला की आयात से इसके बाद के वो उतारी गई हैं आपकी तरफ। हम भी सब मुख्तात रहें, कोई हीले बहाने से, कोई रोब से, कोई शक से हमें इस कुरान से दूर ना कर दे। वदु इला रब्बिक, यहाँ रुकना नहीं है बल्कि आगे अल्लाह की तरफ लोगों को रब्स की तरफ बुलाइए। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और हरगिज ना हो जाए शिर्क करने वालों से। लगता है कि यह 1400 साल पुरानी है, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ये आज हमें कहा जा रहा है कि इस कुरान को पूरा करने का इंतज़ार न रखो कि चल पड़े जहाँ से आए थे, और जो बात पीछे अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के लिए मक्का के नाते में कही, हम इस दुनिया को कह दें कि गम ना करो, लरा दू कई इलामात, बस मैं वापस आने वाली हूँ अपनी महफिलों में, फिर वही पार्टियाँ, वही बेमकसद शॉपिंग्स, और वही दावतें और वही खाने। नहीं, पीछे ना पलटो। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, यहाँ शरीक कौन है जो दुनिया की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। वला तदुमा अल्लाह इला खनाखर, ये काम आसान कब होगा? तौहीद पुख्ता कर लें, और ना पुकारो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद, क्योंकि ला इलाह इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह, हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसकी ज़ात के। उसकी ज़ात को फना नहीं है, उसका चेहरा नहीं मिटेगा। लहुल हुक, इसी की हुक्मरानी है। वइलैहि तुरजऊन, और इसी की तरफ तुम्हें पलट कर आना है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आखिरी आयत में। कौन जमेगा जिसको इस बात का यकीन होगा कि कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज़ हलाक होने वाली है। कुल्लु शैइन, सारा नकरा, बड़ी भी जाएगी, छोटी भी जाएगी, सब चीज़ें चली जाएंगी, सिर्फ़ एक चीज़ बाकी रहेगी, अल्लाह की ज़ात। तो अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी ना, तो अल्लाह का नाम भी बाकी रहेगा, अल्लाह की किताब भी बाकी रहेगी। जिस किताब के साथ हम जुड़े हुए इस वक्त, ये किताब ही कब्रों में हमारे साथ जाएगी। इसी का इल्म, इसी का अमल, इसी का पढ़ना, इसी का पढ़ाना, और लहुल हुक्म, इसी की हुक्मरानी हमारी ज़िंदगियों में होगी तो कामयाब होंगे। अरबी ज़ुबान में वस चेहरे को कहते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए बस चेहरा ही कहेंगे, ज़ात भी मुराद है इससे। किसी की खुश रजामंदी भी को भी वच कहते हैं। वइलैहि तुरजऊन, पलटना उसी की तरफ है। किधर जाओगे? कोई रास्ता नहीं है। अब तुम एक ऐसे दायरे में आ चुके हो कि जब निकलना भी चाहोगे तो निकल के वहीं आ जाओगे। तो ये थी सूरत अल-क़सस। इसका जो आखिर है, ये सूरत अल-अनकबूत के शुरू को समझने में मददगार होगा। वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।